एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो दुनिया की आबादी के लगभग पांचवें हिस्से के लिए जिंदगी का केंद्र है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए अक्सर एक रहस्य जैसी बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं कुरान की, और हमारी गाइड हैं माइकल कुक की किताब द कुरान, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
बिल्कुल, और ये किताब इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये हमें किसी धार्मिक चश्मे से नहीं, बल्कि एक इतिहासकार की नजर से कुरान को देखने का मौका देती है।
अच्छा,
ये भक्ति या विवाद के रास्ते पर नहीं जाती, ये बस पूछती है ये ग्रंथ क्या है, ये कहाँ से आया और इसने दुनिया को कैसे बदला।
तो मतलब ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत है जो शोर शराबे से परे जाकर इसे समझना चाहते हैं।
हाँ, एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु।
और आज के दौर में तो ये समझना बहुत जरूरी भी हो गया है। मतलब वैश्विक राजनीति से लेकर रोजमर्रा की संस्कृति तक इस्लाम और कुरान का जिक्र हर जगह है।
सही बात है।
तो ऐसे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय सीधे स्रोत को समझने की कोशिश करना मुझे लगता है एक जिम्मेदार नागरिक होने जैसा है, और कुक की ये किताब हमें वही करने में मदद करती है।
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं।
हाँ, और शुरुआत लेखक से ही करते हैं। माइकल कुक हैं कौन?
माइकल कुक कोई आम इतिहासकार नहीं है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और कह सकते हैं कि शुरुआती इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं। उनका काम बहुत ही बारीक और सबूतों पर आधारित होता है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि वो सिर्फ इतिहासकार नहीं बल्कि भाषाओं के भी माहिर हैं। उन्हें अरबी और उस दौर की दूसरी भाषाओं की गहरी समझ है। ये तो बहुत जरूरी होगा ना?
बनाती है। वो सिर्फ घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उस भाषा और संस्कृति को भी समझते हैं जिसमें कुरान का संदेश सामने आया।
अच्छा,
वो इस्लाम से पहले के अरब समाज को जानते हैं, इसलिए वो कुरान को एक वैक्यूम में नहीं बल्कि उसके असली, उसके हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख पाती हैं।
मतलब वो एक तरह से एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं जो हर सुराख को उसकी सही जगह पर रखकर पूरी तस्वीर बना रहा है।
हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का।
और उनका नजरिया कैसा है? क्या वो बहुत ज्यादा पश्चिमी या अकादमिक है?
यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो अकादमिक तौर पर बहुत सख्त हैं। मतलब कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहती, लेकिन साथ ही वो विषय की संवेदनशीलता का पूरा सम्मान करती हैं। वो मुश्किल सवाल उठाने से नहीं डरती, लेकिन उनका अंदाज हमेशा सम्मानजनक होता है। इसीलिए उनकी किताब को एक श्रद्धालु भी पढ़ सकता है और एक नास्तिक भी, और दोनों को ही कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो इस किताब का असल मकसद क्या है? क्या ये कुरान को समझाने की कोशिश कर रही है?
समझाने से ज्यादा अच्छा शब्द होगा परिचय कराना। इसका मकसद किसी को कुछ मनवाना या किसी नतीजे पर पहुंचाना नहीं है।
ठीक है।
ये एक गाइड की तरह है जो एक अपरिचित लेकिन बेहद अहम दुनिया का नक्शा आपके हाथ में थमा देती है। ये बताती है कि कुरान क्या है, इसकी बनावट कैसी है, इसके बड़े विचार क्या हैं और इसने इतिहास पर क्या असर डाला है।
तो ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
इसकी शुरुआत होती है 7वीं सदी के अरब के रेगिस्तान से, मक्का शहर से। किताब हमें उस दौर की दुनिया में ले जाती है, एक ऐसी जगह जो व्यापार का बड़ा केंद्र थी लेकिन जहां समाज कबीलों में बटा हुआ था और लोग सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते थे।
और किताब का सबसे बड़ा तर्क क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो तो?
सबसे बड़ा तर्क ये है कि कुरान को समझने के लिए उसे उसके ऐतिहासिक संदर्भ से काट कर नहीं देखा जा सकता। ये कोई आसमान से टपकी हुई किताब नहीं है। ये 7वीं सदी के अरब के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सवालों का जवाब दे रही थी, और इसके अलावा किताब कुरान के मुख्य विषयों पर, जैसे एक ही ईश्वर का विचार जिसे तौहीद कहते हैं, पिछले नबियों की कहानियां और हिसाब का दिन, इन सब पर बहुत साफ तस्वीर पेश करती है।
चलिए इसी ऐतिहासिक संदर्भ में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 7वीं सदी का मक्का सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। वो दुनिया कैसी थी?
हाँ, कल्पना कीजिए एक हलचल भरा शहर जहां दूर दूर से व्यापारी कारवां लेकर आते हैं। यहाँ काबा नाम की एक पवित्र इमारत है जिसमें कहते हैं 360 मूर्तियां रखी हैं।
360?
हाँ, हर कबीले का अपना देवता है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा का मतलब था आपका कबीला। अगर आपका कबीला मजबूत है तो आप सुरक्षित हैं, वरना नहीं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई एक कानून नहीं।
और ऐसे माहौल में एक आवाज उठती है जो कहती है कि ये सारे देवी देवता झूठे हैं, ईश्वर सिर्फ एक है।
बिल्कुल,
ये तो समाज के नींव पर हमला करने जैसा रहा होगा। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक धमाका था।
बिल्कुल, ये कहना कि तुम्हारी पहचान कबीले से नहीं बल्कि इस एक ईश्वर पर तुम्हारे विश्वास से है, ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसने पूरे पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे दी।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये संदेश लोगों तक पहुंचा कैसे और एक किताब की शक्ल में कैसे आया? उस जमाने में तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे।
हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस्लामी परंपरा के मुताबिक ये संदेश पैगंबर मोहम्मद को करीब 23 सालों तक धीरे धीरे आयतों के रूप में मिले।
अच्छा।
इन्हें सहेजने के दो मुख्य तरीके थे। पहला और सबसे जरूरी था याद करना। अरबों की याददाश्त बहुत तेज मानी जाती थी। पैगंबर के साथ ही इन आयतों को कंठस्थ कर लेते थे।
और दूसरा तरीका?
दूसरा तरीका था इन्हें किसी भी उपलब्ध चीज पर लिख लेना, जैसे खजूर के पत्ते, सपाट पत्थर, यहाँ तक कि ऊंट के कंधे की हड्डियाँ।
रुकिए, ऊंट की हड्डियाँ? मतलब ये सब कुछ बहुत बिखला हुआ था।
हाँ बिल्कुल।
तो फिर इन बिखरी हुई चीजों से एक मानकीकृत किताब, एक स्टैंडर्डाइज्ड बुक कैसे बनी? ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा।
ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कहानी है। पैगंबर के निधन के बाद कुछ लड़ाइयों में कई ऐसे लोग मारे गए जिन्हें कुरान मुंह जबानी याद था। तब ये चिंता हुई कि कहीं कुरान का कोई हिस्सा खो ना जाए।
ये तो जाहिर है।
इसलिए तीसरे खलीफा उस्मान के दौर में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने हर लिखित हिस्से और हर याद करने वाले व्यक्ति से बात करके एक, कह सकते हैं, एक आधिकारिक कॉपी तैयार की।
और बाकी के हिस्सों का क्या हुआ जो पत्तों और हड्डियों पर लिखे थे?
भविष्य में किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए बाकी सभी अधूरी या अलग अलग प्रतियों को नष्ट कर दिया गया।
अच्छा।
आज दुनिया में जो कुरान मौजूद है वो उसी उस्मानिक संस्करण पर आधारित है।
कमाल है। तो मतलब इतने जतन के बाद जब एक किताब तैयार हुई तो उसे खोला गया होगा। मैंने सुना है कि जो कोई इसे पहली बार खोलता है उसे इसकी बनावट थोड़ी उलझन भरी लग सकती है।
हाँ,
ये किसी आम कहानी की तरह शुरू से आखिर तक नहीं चलती।
आपने सही सुना, कुरान में 114 अध्याय हैं जिन्हें सूरह कहते हैं, लेकिन ये किसी घटना के क्रम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है।
तो फिर किस ऑर्डर में है?
मोटे तौर पर इन्हें इनकी लंबाई के घटते क्रम में रखा गया है, यानी सबसे लंबी सूरा शुरू में और सबसे छोटी सूरा आखिर में।
किताब एक और जरूरी फर्क बताती है मक्की और मदनी सूरों के बीच। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है?
ये कुरान को समझने की एक बहुत जरूरी चाबी है। मक्की सूरा वो है जो पैगंबर के मक्का में रहने के दौरान नाजिल हुई। ये आमतौर पर छोटी, बहुत काव्यात्मक और लयबद्ध होती हैं।
अच्छा, पोएटिक।
हाँ बिल्कुल। और इनका जोर आस्था की बुनियादी बातों पर है। ईश्वर एक है, मरने के बाद हिसाब होगा, अच्छे काम करो वगैरह।
और मदनी सूरा?
मदनी सूरा मक्का से मदीना जाने के बाद की हैं। तब तक मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक समूह नहीं थे, वो एक समाज और एक छोटे से राज्य की तरह बन चुके थे।
हाँ, अब उनके पास अपनी कम्युनिटी थी।
बिल्कुल। इसलिए इन सूरों में व्यवहारिक मसलों पर बात होती है, कानून, शादी ब्याह, विरासत, युद्ध और दूसरे समुदायों से रिश्ते कैसे हों। इस फर्क को समझे बिना कुरान के संदेश के विकास को समझना नामुमकिन है।
ठीक है, अब आते हैं किताब के दिल पर, यानी इसकी सामग्री। इसका वो एक केंद्रीय संदेश क्या है जो बार बार दोहराया जाता है?
बिना किसी शक के वो है तौहीद, यानी ईश्वर की एकता। कुरान सैकड़ों बार इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर एक है, वो हर जगह है, वो सब कुछ जानता है, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही उसका कोई साथी है।
और ईश्वर के साथ किसी और को मानना?
ईश्वर के साथ किसी और को शरीक करना, जिसे शिर्क कहते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह माना गया है।
और नबियों या पैगंबरों के बारे में कुरान क्या कहता है? इसमें तो आदम, मूसा और ईसा, मतलब यीशु जैसे नाम लिए आते हैं।
हाँ, और यही बात बहुत से लोगों को चौंकाती है। कुरान के मुताबिक ईश्वर ने इंसान को रास्ता दिखाने के लिए हमेशा नबी भेजे हैं। ये सिलसिला आदम से शुरू होता है और इसमें नूह, अब्राहम, मूसा और ईसा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
और ये सब एक ही संदेश लाए थे?
हाँ, कुरान कहता है कि ये सभी एक ही संदेश लेकर आए थे, एक ईश्वर की इबादत करो। मोहम्मद इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, जिन्हें नबियों की मोहर कहा गया है।
इसका मतलब कुरान खुद को एक बिल्कुल नए धर्म की तरह नहीं देखता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को अब्राहम के उस मूल शुद्ध एकेश्वरवादी विश्वास की एक तरह से वापसी के तौर पर देखता है।
अच्छा, एक रेस्टोरेशन की तरह।
हाँ, इसका दावा है कि यहूदियों और ईसाइयों ने वक्त के साथ असली संदेश में कुछ बदलाव कर दिए थे, और कुरान उसी संदेश को उसकी असली शक्ल में बहाल करने और पूरा करने के लिए आया है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। ये पिछली किताबों जैसे तौरा और इंजील की कहानियों को भी दोहराता है, लेकिन शायद थोड़े अलग अंदाज में।
हाँ, अंदाज अक्सर अलग होता है। जैसे अब्राहम को एक आदर्श एकेश्वरवादी, एक हनीफ बताया गया है, जो न यहूदी थे न ईसाई। ईसा मसीह को एक महान पैगंबर माना गया है, जो कुमारी मरियम से पैदा हुए और उन्होंने चमत्कार भी किए, लेकिन उन्हें ईश्वर का बेटा नहीं माना जाता। हर कहानी को तौहीद के केंद्रीय विचार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और एक आम मुसलमान की जिंदगी में कुरान की क्या जगह है? ये सिर्फ एक किताब तो नहीं है जिसे ताक पर रख दिया जाए।
बिल्कुल नहीं। कुरान शब्द का मतलब ही है पढ़ी जाने वाली चीज या पाठ। इसे पढ़ा नहीं जाता, इसका पाठ किया जाता है, अक्सर संगीत की तरह। ये मुसलमानों की रोजाना 5 वक्त की नमाज का अटूट हिस्सा है। और इसकी आयतों ने इस्लामी कला, खासकर सुलेख यानी कैलीग्राफी को जन्म दिया है, क्योंकि इस्लाम में इंसानी तस्वीरें बनाने पर पाबंदी थी।
और आज के जमाने में इसकी व्याख्या कैसे होती है? मतलब क्या इसका एक ही मतलब है?
नहीं, आज इसके व्याख्या को लेकर बहुत विविधता है। एक तरफ सुधारवादी विचारक हैं, जो इसे मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों के साथ जोड़कर देखते हैं। दूसरी तरफ कट्टरपंथी समूह हैं, जो अपने कामों को सही ठहराने के लिए इसका हवाला देते हैं।
तो मतलब ये आज भी एक जिंदा और ताकतवर ग्रंथ है।
बिल्कुल, जिसके मायने को लेकर लगातार बहस चलती रहती है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद कुछ बड़े विचार हैं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। पहला तो ये है कि कट्टर एकेश्वरवाद, वो सिर्फ एक पूजा पाठ का तरीका नहीं था।
नहीं,
उसने तो समाज को बदलने का काम किया। कबीले की पहचान को मिटाकर एक वैश्विक समुदाय यानी उम्मा की पहचान बनाई।
हाँ, तौहीद का सामाजिक पहलू बहुत गहरा है। और दूसरा बड़ा विचार है भविष्यवाणी की श्रृंखला। कुरान खुद को इतिहास में एक अकेली घटना की तरह नहीं देखता,
बल्कि एक लंबी परंपरा का हिस्सा मानता है।
हाँ, एक बहुत लंबी परंपरा की आखिरी कड़ी के रूप में देखता है। वो यहूदी और ईसाई धर्म से रिश्ता भी जोड़ता है और खुद को उनसे बेहतर भी बताता है।
तीसरा विचार जो मुझे बहुत प्रभावी लगा वो है नैतिक जवाबदेही का। ये सोच के जिंदगी एक इम्तिहान है और हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना है। जन्नत और जहन्नुम का जो जिक्र है वो लोगों को सही रास्ते पर चलाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है।
और चौथा, जो शायद इसे बाकी ग्रंथों से अलग करता है, वो ये मान्यता है कि कुरान सीधे सीधे ईश्वर के शब्द हैं।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है।
इस्लामी मान्यता ये नहीं है कि ये किसी इंसान की लिखी किताब है जिसे ईश्वर ने प्रेरणा दी, बल्कि ये कि ये ईश्वर के ही बोले हुए शब्द हैं जो पैगंबर मोहम्मद के जरिए दुनिया तक पहुँचे। यही विश्वास इसे एक अनोखा दर्जा देता है और अरबी भाषा में इसके पाठ को इतना अहम बनाता है।
माइकल कुक की किताब से कुछ ऐसे विचार भी हैं जो कुरान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं, एक चाबी की तरह।
हाँ, जैसे कुक का ये कहना कि कुरान की संरचना एक ऐतिहासिक कहानी जैसी नहीं, बल्कि एक दिव्य संवाद जैसी है।
दिव्य संवाद।
हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप इसे किसी उपन्यास की तरह पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद निराश होंगे। इसका अपना एक अलग लॉजिक है, जो समय के हिसाब से नहीं बल्कि संदेश की जरूरत के हिसाब से चलता है।
एक और विचार जो मुझे बहुत दमदार लगा वो ये है कि कुरान खुद को कोई नया संदेश नहीं, बल्कि उसी एक शाश्वत संदेश की आखिरी और सबसे मुकम्मल शक्ल मानता है जो हमेशा से इंसानियत को भेजा गया है।
बिल्कुल, ये उसके उस दावे को साफ करता है कि वो पिछली परंपराओं की गलतियों को सुधारने आया है।
और आखिर में वो आवाज वाली बात।
हाँ, वो बहुत गहरा विचार है कि मुसलमानों के लिए कुरान सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि ये ईश्वर की मौजूदगी की आवाज है। ये बात सिर्फ शब्दों के मतलब को समझने से कहीं आगे जाती है। ये कुरान के पाठ को सुनने और पढ़ने के आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देती है।
ठीक है, ये अकादमिक जानकारी बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? किसी को ये सब क्यों जानना चाहिए?
देखिए, सबसे पहला और सीधा फायदा है वैश्विक सांस्कृतिक साक्षरता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई हैं।
सही बात है।
दुनिया के लगभग 2 अरब लोगों की सोच को शेकिल देने वाले ग्रंथ को समझे बिना हम दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये हमें अखबारों की सुर्खियों से आगे देखने में मदद करता है।
दूसरा, ये अंतरधार्मिक संवाद के लिए एक जमीन तैयार करता है ना? जब हम जानते हैं कि दूसरा पक्ष असल में क्या मानता है, तो हम नफरत या गलत फहमी की जगह समझ और सम्मान के साथ बात कर सकते हैं।
बिल्कुल, हम जान पाते हैं कि समानताएं कहाँ हैं और असली मतभेद कहाँ हैं।
और तीसरा, कुक का तरीका हमें किसी भी पवित्र ग्रंथ के बारे में गहराई से सोचना सिखाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या हमें सवाल पूछना सिखाता है, ये ग्रंथ कैसे बना, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था और समय के साथ लोगों ने इसके अलग अलग मतलब कैसे निकाले।
और मुझे लगता है कि आखिर में चाहे हमारी अपनी आस्था कुछ भी हो, ये हमें न्याय, दया और जिंदगी के मकसद जैसे सार्वभौमिक सवालों पर एक नई नजरिए से सोचने का मौका देती है।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात व्याख्याओं की विविधता थी। हम अक्सर सोचते हैं कि कुरान का बस एक ही मतलब है, जो कि ऐतिहासिक रूप से सच नहीं है। कुक दिखाते हैं कि इस्लामी परंपरा के अंदर ही सदियों से इसके मतलब को लेकर जबरदस्त बहसें होती रही हैं।
मतलब आस्था और बुद्धि एक साथ चल सकते हैं।
बिल्कुल, ये यही दिखाता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये थी कि कुरान को उसकी साहित्यिक और ऐतिहासिक बनावट के बिना नहीं समझा जा सकता।
नहीं,
ये सिर्फ आदेशों और नियमों की किताब नहीं है।
नहीं,
ये एक जटिल काव्यात्मक और शक्तिशाली रचना है जिसने एक पूरी सभ्यता को प्रेरित किया है। इसे सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।
नहीं,
इसे
बिल्कुल सही कहा। और ये किताब दिखाती है कि अकादमिक अध्ययन भी सम्मान के साथ किया जा सकता है और ये असल में अलग अलग संस्कृतियों के बीच समझ के पुल बनाने में मदद कर सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।